अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति वैष्णव भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की कृपा से श्री श्री राधा राधा राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम नेता मंदिर स्कान पंजाबी बाग रविवार के प्रातः भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद, उसमें विशेष रूप से ईशान कथा है। ईश हरे कृष्ण ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान और अनु मतलब उनके अनुगामी भक्त। तो भगवान और भगवान के भक्तों की कथा, ये नवें स्कंद का विषय है। 24 अध्याय है, 12 अध्यायों में सूर्य वंश और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश के वर्णन में भगवान रामचंद्र का अवतार और 10 पुत्र जो विवस्वत मनु है, सूर्यदेव का पुत्र विवस्वत मनु जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया, उसके 10 पुत्रों के राज का वर्णन है। उनके 10 पुत्रों में ऐसे ऐसे महाप्रतापी पुत्र अम्बरीश जैसे हुए हैं जिसका वर्णन सुना आपने, भगवान के सुदर्शन चक्र ने जिसका रक्षा किया, आगे भागीरथ जैसे हैं जो धरती के ऊपर गंगा लाए। तो ऐसे सारे ही भागवत पुरुषों का वर्णन है। और चंद्रवंश में फिर परशुराम जी और भगवान श्री कृष्ण बलराम के अवतार का वर्णन है। और महाराज पुरुर्वा, महाराज ययाति, महाराज यदु इन सब का, और फिर पांडवों की इन सब की उत्पत्ति का वर्णन है। भगवान और भगवान की कथा, भगवान और भगवान के कथा सुनने से हमारे मन के ऊपर जो कई जन्मों के कर्मों के वासनाओं का इम्प्रेशन होते हैं, जो निशान होते हैं, वो सब मिट जाते हैं। तब जाके हम दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला धाम में प्रवेश करके उसको आस्वादन कर सकते हैं। तो नवा स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो नाम है, बहुत से वर्ण, बहुत से क्षत्रिय वंशों के नाम हैं, लेकिन ये नाम अपने आप में पवित्र करने वाले हैं। नामों के उच्चारण से भी पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि ये सब भगवान के भागवत पुरुषों के नाम हैं। और आज जो छठे स्कंद में, वैसे तो महाराज अम्बरीश के वंश का वर्णन आ रहा है, उस वंश में आगे चल के मथुरा का एक बड़ा बड़ा चक्रवर्ती राजा मांधाता हुआ। तो मथुरा में राजा थे मांधाता। अब यहाँ मांधाता राजा के पास उस वक्त में जमुना के जल में तपस्या करने वाले सौबरी ऋषि के पतन का, इस अध्याय का शीर्ष है सौबरी ऋषि का पतन। तो मांधाता महाराज का राज मथुरा मंडल में था और सौबरी ऋषि जमुना में जल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे। क्या कारण है सौबरी के पतन का? बाहर की दृष्टि से एक मछली और मच्छे को आपस में आलिंगन करते, प्रेम क्रीड़ा करते देखा तो उसके मन में काम की वासना जागृत हो गई। ज्ञान से, योग से, तपस्या से बाहर के रूप से इंद्रियों को रोका जा सकता है, लेकिन अंदर में जो काम की वासनाएं हैं मौका देख के फिर जाग के उभर के आ जाती हैं। भक्ति उनको मूल से नष्ट कर देती है, ये दोनों में अंतर है। तो सौबरी जो है वो तो योग अभ्यास कर रहा था, तो ये अंतर है दोनों में। ये तो हुआ दर्शन, केवल देखने से उसका मन विचलित हुआ और मांधाता के राज में चले आए। और अंतरंग रूप से गरुड़ भगवान का वाहन भी है, भगवान का भक्त भी है, भगवान का सेवक भी है नित्य। वो जमुना में मछली का शिकार कर रहा था, क्योंकि उसका एक ही ऐसा वैष्णव है गरुड़ जो खाता मछली है और कुछ नहीं खा, मांस खाता है। तो सौबरी ने उसको शराब दे दिया था कि तुम यहां आया तो मर जाएगा, तो ये वैष्णव अपराध भी हो गया, तो ये दो कारण सामान्य, एक सामने दिखने वाला कारण है और एक वैष्णव अपराध के फल स्वरूप उसको काम की वासना का उत्पन्न हुआ और उस वासना से वो महाराज मांधाता के राज में आए। और मांधाता पहले ब्राह्मण क्षत्रिय के राजा के पास जाके कहते थे कि हमको विवाह कराओ, वे तपस्वी होते थे, कोई परिवार तो होता नहीं था, राजा ही सबका पिता माता सब कुछ राजा होता है, या राजा है भगवान है फिर राजा है, तो उसको जाके कहते थे हमारा विवाह कराओ। तो वहां चले गए तो राजा ने देखा कि ये तो बूढ़ा है, इसकी आंखें अंदर चली गई, ये गाल अंदर घुस गए हैं, ये तो अभी विवाह का सोच के आए, क्या हुआ है महाराज को, लेकिन डरते थे कि ये तपस्वी कहीं शराप न दे दे। तो बोला आप हमारे रनवास में चले जाओ, रानियों के वहां जो आपको पसंद करे उससे विवाह कर लो। तो ये समझ गया सौब्री जी के महाराज बड़े चतुर हैं, क्षत्रिय हैं, समझते हैं कि मेरे दुबले पतले ऐसे बूढ़े से कौन शादी करेगा। तो अब क्या किया, उनके पास योग शक्ति थी, तपस्या से ये शक्ति जो आई तो वो एक बहुत सुंदर हो गए, इतना सुंदर हो गए, इतने सुंदर हो गए, जैसे अंदर गए तो बहनों ने अपना वो बहनों वाला प्रेम भूल गई, वो बोलते तुम नहीं मैं इसके शादी करूंगा, तुम नहीं मैं शादी करूंगा, 50 की 50 आपस में लड़ने लग गए और 50ों के साथ सौब्री जी ने शादी कर ली। और जो आपने कल श्लोक पढ़ जो सुना होगा तो उसमें तो 2 श्लोकों में महाराज मांधाता ने देखा कि सौब्री जी की व्यवस्था इतनी उत्तम है, इतने महल बनाए हैं, सब व्यवस्थाएं अच्छी उत्तम भोग की है, तो बड़े प्रसन्न होके चले गए। वो तो प्रसन्न होके चले गए कि हमारी लड़कियां सुखी होगी, लेकिन सौब्री दुखी हो गया। तो आज सौब्री के दुख का समाचार हम सुन रहे हैं, मतलब जो विवाह करता है उसका दुख का क्या समाचार है वो हम आज सुन रहे हैं समाचार इसमें लिखा है, तो सुनो आप सौब्री का समाचार सुनिए। तो 48 नंबर श्लोक का पाठ कीजिए। एवं गृहेषु अभिरतो विश्यान् विविधै सुखैः सेवमानो न च सेव्यमानो न चातुष्यात् आजस्तोकै इवा अनलः एवं गृहेष्वभिरतो विश्यान् विविधै सुखैः सेवमानो न चातुष्यात् आजस्तोकैवानलः एवं गृहेष्वभिरतो विश्यान् विविधै सुखैः सेवमानो न चातुष्यात् आजः स्तोकैवानलः। पाठ कीजिए। एवं का मतलब इस प्रकार, बहुत बड़ा घर में सारी व्यवस्था करके योग से और सुख से, गृहेषु, गृहेषु शब्द का मतलब है, गृह का मतलब घर नहीं है, गृह का मतलब है घरवाली। जैसे लिखता है कि ऐसा लिखा है मेरे ख्याल में 4th स्कंद में, जहां ब्रह्मा जी के 9 ब्रह्मचारी पुत्रों का वर्णन आता है, 4 कुमार ऋभु नारद, वो गृह में प्रवेश नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं घर में प्रवेश नहीं किया, इसका मतलब है कि उन्होंने घरवाली का पाणी ग्रहण नहीं किया। तो जब घरवाली होती है तो घर की जरूरत होती है, अगर घरवाली नहीं है तो पेड़ के नीचे भी सो के काम चल जाएगा। तो सीधा सा बात है, गृहेषु का मतलब है घरवाली, यहां तो घरवालियां हो जाएगी 50 हैं। एवं गृहेषु अभिरतो, अभिरतो का मतलब अभीक्षण, अभीक्षण का मतलब हर समय, और रतो का मतलब रत रहना, रत रहना मतलब 24 घंटे अभी यदि अभी क्षण जप करना चाहिए, हम भक्तों को एकदम सारे समय भगवान का जप करना चाहिए, वो हर समय घर गृहस्थी में इतना अभिरत ऑलवेज एंगेज, अभी तो मतलब सदा के लिए उसमें लगा रहता था। किस में लगा रहता था? विषयान विविधई सुखई, नाना प्रकार के विषयों के सुखों में। तो नाना प्रकार के विषयों का सुख क्या है भाई? विषय का है, विषय तो है पांच, और पांच है इंद्रियां, आंख से सुंदर देखना, कान से अच्छे अच्छे कुछ उसकी वार्ता सुनना, और ऐसे जो भी इंद्रिय हैं उनके सुख ले रहा था। अच्छा भोजन पकाए तो जी वासे उसको खाना। वैसे भी कहते हैं पत्नी पति को अगर अपने बस में करना चाहिए तो अच्छा भोजन पकाना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद का कहना है कि लड़कियों को अच्छा रसोई पकाना सिखाना चाहिए, क्योंकि अच्छा पकाने वाली स्त्री अपने पति को वश में कर सकती है। आजकल तो सब बाहर खाते हैं पिज्जा पास्ता, इसलिए उनके वश में है, पत्नियों के वश में भी नहीं है। नहीं, अच्छा पकाने वाली स्त्री का ये उसका मुख्य धर्म है। श्री श्री राधा राधिका रमन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की, श्री गौर निताय की, प्रभुपाद की। तो इंद्रियों के विषयों के नाना प्रकार के सुखों का भोग निरंतर करता रहा गृहस्थ में, इसका अर्थ ये हुआ। अब भगवत गीता का कोई श्लोक याद आता है जिसमें इंद्रियों के विषयों के सुख का परिणाम क्या निकलता है? हाँ, ये संस प्रसजा भोगा दुख योनि एवते आद्य अंत वंत कौन्ते नतेषु रमते बुद्धा। इस श्लोक का अर्थ क्या है? जो इंद्रियों के सुख में रमण करता है उस सुख के गर्भ में दुख का जन्म होता है, वो सुख ही दुख को जन्म देता है। तो दुख का जन्म कहां होता है? बोले इंद्रिय भोग के सुख में दुख का जन्म होता है। इसको बिजनेस की भाषा में क्या कहते हैं? बाय वन गेट वन फ्री। इंद्रियों का सुख लो, दुख आपको अपने आप मुफ्त में मिलेगा, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो आपका अपने आप घर पहुंच जाएगा, होम डिलीवरी है। आप सुख लो, दुख आपके गले पड़ेगा ही पड़ेगा। अब लिखा है सेवानो न च तुष्येत, इस भोग से उसको संतुष्टि नहीं हुई, अतुष्येत तुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, अतुष्येत। असतुष्येत का मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, इतना सारा भोग किया, सेवमान, यहां सेवमान का अर्थ ऐसे होता है कि इंद्रियों के सेवन करने से, इंद्रियों के सेवन करने से मतलब इंद्रियों से भोग करने से वो संतुष्ट नहीं हुआ। बोला उदाहरण क्या है? तो यहां उदाहरण देते हैं, आज स्तोकई एव अनलही। अनल तो अनल किसको कहते हैं? आग को। और आज स्तोक का मतलब है घी। घी अगर आग में डालते जाएंगे तो आग बुझेगी नहीं, ऐसे इंद्रियों सुख है आग। उसका जो उसके अंदर जो ऊपर से भोग करते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। कौन से प्रसंग में ये और ऐसा श्लोक बताया गया है? ययाति के, हाँ, प्रहलाद महाराज तो ऐसी स्थिति नहीं है उसकी, अजामिल का भी नहीं है, पुरंजन का भी नहीं। ये दक्ष के 10,000 पुत्रों को जब नारद जी ने संत बनाया, साधु बनाया, तो दक्ष ने कहा अभी तो उन्होंने भोग किया ही नहीं है, आपने उसको कैसे बना दिया? तो उन्होंने क्या कहा? आज तक कोई भोग करने से संतुष्ट हुआ ऐसा तो उदाहरण है नहीं भाई। आग में घी डालने से कभी आग समाप्त थोड़ी होती है। तो ये नकार आ गया कि ये तो कोई साधन है ही नहीं कि भोग करने से कोई संतुष्ट हो जाएगा। भोग करने से और ज्यादा भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, कभी समाप्त होगी नहीं। त्याग से भोग को छोड़ा जा सकता है, भोग को भोग से नहीं छोड़ा जा सकता है। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत भागवत में क्या किया गया है, इसको रिजेक्ट किया गया है। जबकि बहुत से प्रचारक कहते हैं भोग करो, अपने आप भोग से एक दिन विरक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण एक दूसरा कौन कहा है, दिया है, कंडो क्या खुजली, जितना खुजाला उतना खून ज्यादा निकलेगा और मीठी मीठी खुजली बढ़ती जाएगी। खुजली करने से खुजली कभी समाप्त नहीं होती, और ज्यादा घाव कर देती। तो सिद्धांत क्या हो गया, भोग से कभी भी संतुष्टि नहीं होती, भोग से भोग की संतुष्टि नहीं होती, केवल त्याग से ही भोग से वृत्त हुआ जा सकता। ठीक है, तो ये उदाहरण क्या दे दिया, आग में घी डालना। आज तो कई अंग्रेजी में लिखा है फैट डालना, आज तो कई। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ, अब श्लोक का अर्थ ऐसे लिखा हुआ समझ में आ रहा है, सीधा है ना, नहीं कहां चला गया ये, इधर 48वां श्लोक श्री प्रभुपाद जी द्वारा शब्द अर्थ भी सुन लीजिए, एवं इस प्रकार गृहेषु घरेलू कार्यों में अभिरत सदैव व्यस्त विषयान भौतिक साज सामग्री विविधई नाना प्रकार के सुखई सुख से सेवमानः सेवित का होकर न नहीं च भी अतुष्यत संतुष्ट हुआ। घी की बूंदों से इव सदृश अनलह अग्नि। तो प्रभुपाद जी का अनुवाद, इस प्रकार सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदें पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। ठीक है, श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भौतिक इच्छा जलती अग्नि के समान है, भौतिक इच्छा जलती अग्नि के समान है, और इच्छा को पूर्ति करने का कार्य उसमें घी का काम करेगा। इसका अर्थ ये हुआ, यदि आग को निरंतर घी की बूंदें मिलती रहीं तो आग बढ़ती ही जाएगी और कभी नहीं बुझेगी। तो इस उदाहरण को कैसे, भौतिक इच्छाएं क्या है, अग्नि है, और उनकी पूर्ति की सामग्री क्या काम करती है, घी की बूंदों का। जैसे अग्नि में घी की बूंदें डालने से अग्नि बुझती नहीं है, तो भौतिक इच्छाएं पूरी करने से कभी संतुष्ट नहीं होती। ये सही है गलत, सत्य है कि नहीं है, कभी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती। धन की इच्छा कभी किसी की पूरी हुई आज तक, मेरा पूरा हो गया ऐसा किसी का है किसी ने, बस एक इच्छा जो भौतिक नहीं है आध्यात्मिक है, वो है जप की, जल्दी पूरी हो गई, अभी नहीं जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। आध्यात्मिक इच्छा कभी पूरी होती नहीं है, उसमें बड़ी ये बस हो गया, इसमें जरूरत नहीं है ज्यादा। तो कोई भौतिक इच्छा भोग से कभी पूरी नहीं होती है, यह सिद्धांत स्थापित हो रहा है। अतएव भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते रहने की नीति से सफलता मिलने वाली नहीं है। प्रभुपाद जी सीधा सा शिक्षा दे रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं को पूरे करते करने वाली अगर प्रक्रिया को चालू रखा तो कभी संतुष्टि जीवन में होगी नहीं, क्योंकि यह संभव नहीं है। आज तक बड़े बड़े राजा महाराजा कभी संतुष्ट नहीं हुए, धनी लोग कभी संतुष्ट नहीं हुए, संसार में कोई संतुष्ट होकर यहां से गया ही नहीं है आज तक। भौतिक भोग वाला कभी संतुष्ट होकर नहीं गया है। आधुनिक सभ्यता में हर व्यक्ति आर्थिक विकास में लगा हुआ है, जो भौतिक अग्नि के निरंतर घी की बूंदें डालते रहने के तुल्य है। आर्थिक विकास, वो धन की बात आ गई। आज तक किसी का धन से संतुष्टि नहीं हुई। कौन से राजा की कथा सुन रहे थे कि ये मेरे सेवक संतुष्ट है, मैं राजा हूं, आज तक संतुष्ट क्यों नहीं हूं, मेरे पास सब सुख है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये जो मेरे सेवक हैं, ये तो बड़े संतुष्ट हैं, इनको कोई चिंता तो है नहीं, सिर्फ तनख्वाह से काम चल रहा है। मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। आप ऐसे करो, 99 रुपये डाल के चांदी के और बाहर रख दो और लिखो कि इसमें 100 रुपये हैं, और वो उसको बोलो ये सामान तुम ले जाओ, घर ले जाओ, लिखा है 100, अंदर है 99, तो 99 मिलने की तो उसको कोई सुख नहीं हुआ, एक ढूंढता रहा सारी रात, एक खांग गया। वो जो 99 मिल गए मुफ्त में घर में किसी ने, और लिखा था ये 100 है, अब वो 99 की तो कोई चिंता नहीं है, एक खांग गया सारी रात। महाराज ने कहा देखो सारी रात सोया ये, कि जब तक वो एक की चिंता है, 99 मिले खुश होकर सो जाते, एक भी नहीं था, 99 मिल गया, एक को झंझट को छोड़ो, गया तो गया, लिखा है उसे क्या होता है। अब असंतुष्टि चालू हो गई, भाई वो ढूंढ रहा है कहां गया, तुम्हारा तो था ही नहीं, तुम्हारे को 99 मिल गए, बोलो भगवान ने बड़ी कृपा की। ऐसे हमारे पास भी भगवान ने बहुत कुछ, इतनी सुविधाएं दी है, उनको गिन के सुखी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, जो एक नहीं है उसको पकड़ के बैठे ये क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा समस्या है असल में। किसने एक मैसेज भेजा, बोलो बैंक से चोरी करने डाकू चले गए, तो डाकू ने कहा कि पैसा गिनती कर ले, तो सीनियर ने कहा क्या करोगे गिनती, कल अपने आप पेपर में आ जाए कितने निकले, कौन बैठ के गिनती करेगा। बोले गिनती कौन करेगा इतनी बैठ के, लेकिन दूसरे दिन पेपर में आया 50 लाख गए, उनके पास तो 10 लाख थे। वो क्या, मैनेजर ने कहा कि देखो पहले जो घोटाला किया है वो डाल दो, इसमें डाल दो, वो तो इससे भी स्मार्ट था, कि चोरी तो हो ही गई है, 10 लिखो या 50 लिखो क्या फर्क पड़ता है। डाकू वापस पुलिस में गए, देखो भाई हम तो हैं 10 लाख के डाकू, 40 लाख वो चुरा के गए। सब स्मार्टनेस की बात करने के, कभी आदमी संतुष्ट होता ही नहीं, किसी हालत में संतुष्ट नहीं। तो जो आपको भगवान ने सुविधाएं दी हैं उनको तो पहले गिन के लिस्ट बनाओ कि कितना दिया है, जो दूसरों के पास है नहीं। एक आदमी गर्मियों के दिन थे, जूता नहीं था बेचारे के पास, जा रहा था मंदिर में कि भगवान को प्रार्थना करूंगा जूता दिला दे, बहुत गर्मी है काम पे जाना है। गेट के ऊपर आया, देखा एक आदमी है, उसको पांव ही नहीं है, भिक्षा मांग रहा है। एक दिन मन में आया कि नहीं नहीं भगवान से जूते नहीं मांगूंगा, पांव दिए ये भगवान ने बड़ी कृपा कही है, बगैर पांव वाले कितने दुखी दुनिया में होंगे, तो मेरे को कोई कम दिया है, भगवान ने पांव तो है ना। तो ऐसे जब अपने जो भगवान ने हमको ऐसी अच्छी अच्छे सुख दिए उनकी गिनती करके देख लो, जो नहीं है उसको उसके लिए चिंता कम करो, जो है उसके लिए धन्यवाद करो, तभी संतुष्टि जीवन में आएगी। नहीं तो किसी के पास कोई चीज कम रहे ये तो संभव है, कोई सी बात सब कुछ पूरा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ा जीवन में अपने क्या शब्द एक आता है, शब्द जबान पे नहीं आ रहा है, अपने उसकी क्या शब्द है, अपने आपको जो भगवान ने ब्लेसिंग है उनको गिनो कि कितनी बड़ी कृपा की, जो ब्लेसिंग्स हैं जो आपके ऊपर कृपा की है उसकी गिनती करो, कोई कमी है, कमी होगी भोग की, अच्छा है नहीं दिया, दिया होता तो और परेशानी होती, क्योंकि भोग से कोई संतुष्ट हुआ नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? ये भगवान वामन देव कह रहे हैं। जब बलि महाराज के पास गए हैं तब कहते हैं, बलि महाराज ने कहा तुम बड़ी पंडित जैसी बातें कर रही हो, मांगना तो आता नहीं है, तुम्हारे अपने पांव से 3 कदम जमीन मांग रहे हो। तो बलि महाराज ने कहा ब्राह्मण को संतुष्टि होना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े पृथ्वी और गया जैसे महाराजों की भी संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए मेरे को 3 पांव से ज्यादा नहीं चाहिए, ब्राह्मण को संतुष्टि होना चाहिए। ब्राह्मण का है कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, भगवत तत्व को जानता है, वो ब्राह्मण है। उसके विपरीत जो होता है उसको कृपण कहते हैं, मतलब जो भगवान को नहीं जानता है और संसार की सब चीजों को जानता है तो उसको कृपण कहते हैं। तो ब्राह्मण संतुष्टि होना चाहिए, ये ब्राह्मण की परिभाषा होती थी। किसी ब्राह्मण को कोई दान देने के लिए गया, उसने अपनी पत्नी से पूछा अपने पास शाम को खाने के लिए है? उसने बोला भगवान की कृपा से शाम का है। बोला किसी और को दे दो, हमारे पास आज का है, कल की चिंता हम नहीं करते हैं, ऊपर वाला करेगा। ये ब्राह्मण की परिभाषा है। एक व्यक्ति बेचारा कब बेटा अस्पताल में दाखिल था, ऑपरेशन दूसरे दिन सुबह होनी थी, वो मंदिर के अंदर जाके सारी रात प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान कृपा करना, मेरे बेटे की ऑपरेशन है, कृपा करके मेरे को सहायता कर चाहिए। एक धनी सेठ को रात को नींद नहीं आ रही थी, वो बाहर टहलते टहलते मन में आया कि मंदिर में चला जाऊं, और मंदिर में आ गए और देखा एक व्यक्ति रो रहा है। बोला क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? बोला कल बेटे की ऑपरेशन है, बहुत आवश्यकता है, भगवान कृपा करेंगे। तो उसने तो कहा कि तुम्हें चाहिए क्या, ले लो तुम्हारा काम हो गया, और ये कार्ड मेरा लो, और कुछ जरूरत हो तो मेरे से मांग लो। बोला कार्ड की जरूरत नहीं। बोला क्यों? बोला मेरा कार्ड तो भगवान है, नहीं तो तुम्हारे को रात को आधी रात को इधर कैसे भेजता, तुम्हारे को नींद से उठा के यहां भेज दिया और तुमने अभी आके सब कुछ, अभी तुम्हारा कार्ड रखूं या इसका कार्ड रखूं? वो कार्ड में मुझे कोई रुचि नहीं है, तुम्हारे जिसने तुमको घर से उठा के यहां भेज दिया आधी रात को देने के लिए, वही कार्ड मेरे लिए काफी है। ये है भक्त का विश्वास, भगवान जो देता है उसी में मैं संतुष्ट हूं। दुनिया वाले कितना दे, किसी से दिलवाना होगा तो दे देगा। ये भी आपने कभी सुना होगा, किसी नास्तिक कोई आदमी भगवान कह रहा भगवान भोजन दे दो, तो किसी नास्तिक ने उसके घर में भोजन भेजा और कहा कि तुम्हारे भगवान ने नहीं भेजा है, पूछो तो सही किसने भेजा है। बोला हमें पूछने की जरूरत नहीं, अगर भगवान भेजना चाहे तो किसी नास्तिक के हाथों भी भेज सकता है। भगवान अगर भेजना जाएगा तो किसी नास्तिक के हाथों में भेज सकता है, मैं काय के लिए पूछूं किसने भेजा है, मेरे को भोजन से काम है, भेजने वाले से काम थोड़ी है। सीधा ही बोल दिया उसने कि भेजा, कोई नास्तिक भी भेज सकता है, इसमें क्या है, भगवान को भेजना हो तो किससे भेज सकता है। तो भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के भोग के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब सदगृहस्थी सुबह ये टाइम सब लोग घर के काम में आप भागवत में आ जाते हैं, ये असल में ग्रस्त में रहते हुए सुख शांति से रहने का साधन है। 4 चीजें श्रील प्रभुपाद ने ग्रस्त के लिए कही, अगर शांति और संतुष्टि से रहना चाहे तो भगवत गीता में 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षणों में एक श्लोक में गृह आदिशु पुत्र गृह आदिशु जहां शब्द है वहां 4 चीजें बोली है। किसको याद है? हर गृहस्थी के घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए पहले, और जो घर में बने सो भगवान को भोग लगना चाहिए। जब भगवान को भोग लगे तब परिवार के सब सदस्य बैठ के कीर्तन करें 3, और भागवत गीता आदि का घर में पाठ होना चाहिए। 4 चीजें, ये 4 चीजें जिस गृहस्थी के घर में व्यवस्था है उसके घर में संतुष्टि है, वो कभी असंतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि अब भगवान को संतुष्ट कर रहा है। भगवान संतुष्ट हो गया तो जगत संतुष्ट हो गया, एक भगवान संतुष्ट हुआ तो जगत संतुष्ट हो जाता है। तो एक घर परिवार संतुष्ट हो कौन सी बड़ी बात है, ये बात बहुत सरल समझ में आती है ना। कौन सा कैसे श्लोक कहते हैं, यत तुष्टे जगत तुष्ट, क्या कहते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, कौन सा उदाहरण देते हैं? हाँ नहीं, उदाहरण क्या देते, ये श्लोक है कोट करते, द्रौपदी के घर में दुर्वासा का जाना, सुना है सबने। दुर्वासा पहले किसके पास गए थे, दुर्योधन के, बड़ी सेवा की, और दुर्योधन ने मन में क्या आया, अरे हमारे कजन ब्रादर जो है ना कामे वन में रह रहे हैं, आप उनको आशीर्वाद देना, लेकिन जाना दोपहर के बाद, क्योंकि सुबह वो मॉर्निंग प्रोग्राम में बिजी होते हैं। पांडव ऐसे क्यों बोला, बोला दोपहर को भोजन कर लेगी द्रौपदी, कुछ मिलेगा नहीं, अपने आप साप देगा, उधर ही समाप्त हो जाए। अंदर में क्या भाव था, द्वेष का भाव था, लेकिन आशीर्वाद दिलाना चाह रहा था दुर्वासा की। और दुर्वासा तो खैर भगवान के, दुर्वासा कौन है, भगवान शंकर के अंश से अत्रि और अनुसुया का बेटा है। अत्रि जो तीन गुणों से ऊपर है उसको अत्रि बोलते हैं, अत्रि शब्द का अर्थ है त्रिगुण अतीत, अत्रि। और अनुसुया कहते हैं जो किसी के अंदर दोष न देखे। ऐसा जीव कोई इस स्थिति पे पहुंच जाए तो भगवान ढूंढता नहीं, भगवान अपने आप उसके घर आ जाते हैं। अत्रि और अनुसुया के आश्रम में सीताराम लक्ष्मण अपने आप चल के गए थे, ये रामायण में अत्रि अनुसुया के आश्रम में गए थे, जहां वहां जाके अयोध्या कांड पूरा होता है, वहां से अरण्य कांड शुरू होता है। अत्रि और अनुसुया का आश्रम आज भी चित्रकूट में है, मंदाकिनी की, मंदाकिनी को प्रकट ही अनुसुया ने किया। तो उनका पुत्र है ये दुर्वासा, और भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, और शंकर 12 महाजनों में एक महाजन है, वैष्णव में अग्रगण्य वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, 4 वैष्णव संप्रदाय में एक संप्रदाय का प्रवर्तक है विष्णु, वो शंकर जी, तो वो कोई सामान्य नहीं है, वो तो आशीर्वाद ही देंगे जाके, उनका शाप भी आशीर्वाद जैसा होता है। नहीं तो अम्बरीश की भक्ति ऐसे कैसे विश्व में प्रकट होती अगर दुर्वासा ये काम नहीं करते तो। ये दुर्वासा ने जो किया अम्बरीश की भक्ति को प्रकट किया, कि अम्बरीश की भक्ति के और क्या, जो श्लोक भगवान विष्णु ने कहा अहम भक्त प्राधीन हूं, इसी के आधार के ऊपर तो वैष्णव संप्रदाय टिकी हुई है। तो दुर्वासा ये नहीं करता तो ऐसी ये कथा आती कहां से। तो दुर्वासा चले गए 10,000 शिष्यों के पास, कहां चले गए, कामे वन में, और कहा के भोजन करेंगे, जाके कहा सीधा भोजन करेंगे। और महाराज ने कहा हाँ विराजो, भोजन की व्यवस्था कर, बोले स्नान करके आते हैं जमुना से, द्रौपदी व्यवस्था करो। द्रौपदी ने क्या बोल दिया, संभव नहीं, हमने खा लिया कल, महाराज कल तक बोलो, आज फास्टिंग कर ले, कल सुबह भोजन तैयार मिल जाएगा। नहीं नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और दुर्वासा ऋषि, कोई ऋषि आए और नाराज हो जाए ठीक नहीं है। तो क्या किया द्रौपदी ने, कृष्ण कृष्ण, ये तो बड़ी समस्या होगी। और कृष्ण दौड़ते आए, क्या कहा, अरे भूखा हूं द्रौपदी कुछ दो। बोले तू भी रह गया भूखा, पहले यहाँ 10,000 की पूरी सेना से बैठी है, तू भी खा के नहीं आया, आ गया तो आ गया। बोला नहीं सच बोलता हूँ द्रौपदी, कुछ है तो खाने के। तो बोला कुछ भी नहीं। बोले तो आ पत्र पात्र तो ले आओ, तेरा अक्षय कहाँ है, सूर्य का दिया हुआ ये अक्षय पात्र, उसके अंदर कुछ पड़ा था, क्या पड़ा, चावल का दाना के साग पड़ा था, भगवान ने खाया, मैं संतुष्ट, जगत संतुष्ट। और सारे स्नान करते हुए दुर्वासा के शिष्य सारे पेट को ऐसे डकारे और लगे, महाराज क्या खाएंगे, अभी पेट भर गया, क्या करें गुरुजी। गुरुजी ने कहा मैं अम्बरीश का पहले से एक पाठ पढ़ चुका हूं, अब इसका एक ही इलाज है, थोड़ा सा लंगोटा कसो और भागो। मैं खड़ा हूं, आप चलो। और भगवान ने यहाँ भीमसेन को कहा, भीमसेन जाओ जरा महाराज को कहो भोजन तैयार है, आओ। अब युधिष्ठिर महाराज कहते कहाँ है भोजन, बोला आप बुला के आओ, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास था, ये देखो विश्वास इसको बोलते हैं। क्या वो भीमसेन चला गया, गदा कंधे के ऊपर रखी और कहा महाराज भोजन तैयार है चलो। अब महाराज अकेला खड़ा है, शिष्य समापन, शिष्य तो गुम हो गए, सब कुछ बहुत बड़ा, 1,000-10,000 भोजन की प्लेट तैयार करने को भूल के आया, ऑर्डर कैंसिल। तो बड़ी समस्या हो जाएगी। दुर्वासा ने कहा पांडवों दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देता हूं, आपका कल्याण हो, आज भोजन नहीं कर पाएंगे, सब लोग संतुष्ट हो गए, फिर कभी पधारेंगे। महाराज भोजन कर लेते हैं, हमारे को आशीर्वाद मिलती, बोल दोनों हाथों से आशीर्वाद। सारे परिवार सब पांडवों का कल्याण हो, आपका वन का समय राज जैसा गुजरे, संतों का संग मिले। भीमसेन ने कहा आज इतना खुश है, एक और आशीर्वाद मांग लेते हैं। बोले महाराज फिर एक और आशीर्वाद देता हूँ। बोले जो मांगो। बोले महाराज मेरे पेट में तो वृक अग्नि है, मेरे को वृकोधर कहते हैं, मैं खाता बहुत ज्यादा हूँ, जब ज्यादा खाता हूँ तो सोच ज्यादा जाना पड़ता है, अब एक आशीर्वाद दे दो, खाऊं मैं और सोच जाए शकुनी। दुर्वासा ने कहा तथास्तु। भीमसेन आशीर्वाद लेके आया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आ नहीं रहे। बोला महाराज संतुष्ट हो गए सही, हे भैया कोई नहीं आ रहा है। द्रौपदी मुस्कुरा रही है, अरे भगवान आपने हमारी लाज रख दी। तो कृष्ण जाने लगे तो भीमसेन कहे भैया एक काम करते जाओ। बोला क्या है? बोला मत, हम तो शहर जा नहीं सकते, वनवासी हैं, एक किलो लाल मिर्ची मथुरा से लाना। तो अरे क्या करना है? बोला आज मेरे को घोट के पीना है। महाराज के दुर्वासा के आशीर्वाद का आज मेरे को परीक्षा लेनी है। अरे कृष्णा ठीक है, छह दिन काम करके थक गए थे, आज सातवें दिन घास हंस के खुश हो जाओ। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान संतुष्ट सब संतुष्ट। तो घर में भगवान को प्रसन्न। इंद्रदेव महाराज कहते जब मैं फ्रांस का टेंपल प्रेसिडेंट था, मेरा एक ही उद्देश्य होता था कि सबसे फर्स्ट क्लास भगवान के लिए सेवा की सामग्री कहां से लाऊं। एक चिंता करता था कि भगवान की सेवा के लिए सब चीजें पहले नंबर की हो, बाकी सब काम भगवान अपने आप कर लेते थे। तो एक सिद्धांत बड़ा अच्छा बताया, हमारा सारा केंद्र होना चाहिए भगवान की सेवा, भोग वस्त्र फूल ये कैसे उत्तम से उत्तम हम लाके दें, बाकी भगवान सब काम अपने आप कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत है, असल में हमारी सारी योजना होनी चाहिए भगवान को संतुष्ट करने की। भगवान संतुष्ट तो जगत संतुष्ट हो जाएगा, फिर कोई असंतुष्ट नहीं है। बाकी दुनिया में सब किसी को संतुष्ट कर ही नहीं सकते, कुछ भी करो कोई संतुष्ट नहीं होगा, कभी किसी से कोई संतुष्ट हुआ ही नहीं। तो ये सिद्धांत एक, अपने घर में भगवान को संतुष्ट करो तो घर सारा संतुष्ट हो जाएगा। घर के एक सदस्य को संतुष्ट करने का प्रयास करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहां आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, पाश्चात्य देश भौतिक सभ्यता की पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, किंतु तो भी लोग असंतुष्ट हैं। ये प्रभुपाद जी अमेरिका की बात कर रहे हैं कि ये इतने बड़े प्रगतिशाली हैं फिर भी असंतुष्ट है। हमारे पाश्चात्य देशों के श्रील प्रभुपाद जी शिष्य अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। दीन बंधु जी कहते हैं हमारे पिता डॉक्टर थे, और कितना हमारे पिताजी के पास धन था हमको उसका पता भी नहीं, कितना बेअंत धन था, लेकिन फिर भी घर के अंदर हमेशा कलह रहे। हमको कहा कि आप जाके सोशियोलॉजी पढ़ो, इसका मतलब समाज की सेवा करना। तो हमने सोचा मैं पढ़ के समाज की सेवा करूंगा, इसका मतलब समाज को सुख दूं। सुख लोन दुनिया के सुख की परिभाषा क्या है, मापदंड क्या है? मापदंड है कि पैसा आने से सुखी हो जाए। तो बोला मेरे बाप के इतना पास पैसा पड़ा है, वो तो सुखी हुआ नहीं, तो दुनिया को कैसे सुखी करूंगा। तो उसने अच्छी तरह से दिमाग को ऐसे लगा के देखा कि मैं संसार को सुखी करने की शिक्षा सीखने जा रहा हूं, जबकि सुखी संसार तब होता है जब पैसा मिलता है। ये भिखारी जो बाहर खड़े होते हैं ना, उसको आप केला दे दो, बोला नहीं चाहिए पैसा दो, बोलता है सीधा पैसा दो, केला क्या करेगा, पैसा चाहिए। तो बोला पैसे से अगर सुखी होते तो हमारा पिता सुखी होता, उसके पास पैसे कोई अंत नहीं है, फिर भी घर में रोज झगड़ा है। और नहीं तो हजारों साड़ियां घर में, हजारों ड्रेसें घर में पड़ी है, फिर भी रोज नई ड्रेस लेने का मन में वाय विचार आता है तो इसका संतुष्ट हो जाते तो हो जाते ना। तो वो कहते हमने अपने घरों के अंदर देखा सुख सुविधाएं इतनी है, नहीं तो ये सब लोग उस वक्त घर छोड़ते क्यों, पढ़ाई छोड़ते क्यों, हिप्पी क्यों बनते भाई। संतुष्ट अगर भौतिक चीजें संतुष्टि देती तो ये संतुष्ट हो जाते ना, लेकिन उनको संतुष्टि दी नहीं है। और हमारी क्या हमारी इस वक्त परेशानी क्या, हम उनका नकल कर रहे हैं कि शायद हम संतुष्ट हो जाएंगे, जबकि वो संतुष्ट हुए नहीं, वो बाद में हिप्पी बने, अब हमारे भी बच्चे हिप्पी बनने जा रहे हैं। हाँ, अब देखो इस वक्त जो हम वो अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो कहते हैं हम वृंदावन में रहेंगे और हमारे वृंदावन वाले भक्त कार्तिक में ढूंढते रहते हैं विदेश जाने वाला कोई मिल जाए, तो उल्टा है कि नहीं, हम जा रहे हैं वहां भौतिक जगत में और वो वहां से यहां आके रहना चाह रहे हैं, बहुत उल्टा चक्कर चल रहा है ऐसे घूम के। भौतिकता, श्री प्रभुपाद कह रहे भौतिकता से सुख नहीं मिला पाश्चात्य देशों में हमने देखा, ये प्रभुपाद जी अनुभव की बात कर रहे हैं जो उन्होंने साक्षात देखा है, तो किसी को सुख मिला ही नहीं। हमको दुख से कहना पड़ रहा है, बहुत से हमारे बहुत यहां के प्रतिभाशाली और मेधावी बच्चे बाहर के देशों में काम कर रहे हैं, हम समझते हैं सुखी हैं। अब फिर मेरे को लंबी बात से छोटी दूसरी बात याद है, किसी स्त्री ने दूसरी को कहा, हाँ अरे बहन सुन मेरी लड़की अमेरिका में है। उसने बोला अच्छा अमेरिका में, तो उसके घर में कपड़ा धोने वाली आती है? बोला नहीं आती है। बोला पोछा देने वाली आती है? नहीं आती है। तो बाथरूम साफ करने वाली आती है? नहीं आती है। बोला कौन करता है? मेरी लड़की करती है। बोला उससे तो मेरी अच्छी है, चाहे तीन तीन घर में सेवा वाली आती है। अमेरिका में रहने वाले सबसे बड़े सेठ के घर में भी पोछे वाली नहीं है, काम वाली नहीं है, बर्तन वाली नहीं है, कपड़े वाली नहीं है, बाथरूम साफ करने वाली नहीं है, कचरे का डब्बा बाहर स्वामी मालिक को रख के आना पड़ता है। बताओ वो सुखी है? बोलो यहां तो चार चार आपके घर में काम करने वाली आती है, क्यों सुनाओ तो सही। उसने कहा फिर तेरी लड़की सुखी है कि मेरी लड़की सुखी है, बोलो तो सही। उधर भेज तो दिया, अच्छा मेरी लड़की तो हर शाम को घर आ जाती है, अगर दूसरे गांव में कहीं है तो महीने मास आ जाते, तुम्हारी लड़की कितने बार घर में आई? बोले दो साल हो गए। क्यों नहीं आती है? नहीं इतनी कमाई नहीं है कि साल भर में बार बार यहां आ सके। और सच कहता हूं वहां साल में एक बार वापस अपने मां बाप को देखने आए, इतना पैसा बचता नहीं है उनके पास। हम समझते हैं सुखी हैं, लेकिन उनका हाल हमने देखा है जाके, वो नहीं आ सकते। और हमारे सामान्य भक्त तीन बार पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं, न कोई धंधा करते हैं, न कुछ करते हैं, तो वो उसका लाभ क्या हुआ बताओ। ये सच कह रहे हैं कि उनको वाकई माता पिता को देखने आ नहीं सकते, भेज दिए हमारे बच्चे अमेरिका रह रहे, तुम्हारे किस काम के ये बताओ। एक पिताजी ने कहा तुम्हें 5 लाख वहां मिल रहा है, यहां 5,000 मिले तो भी रहो हमारे आंखों के सामने, कम से कम हमारे को तो सुख मिलना चाहिए ना भाई, ये उदास के उद्देश्य क्या है? नहीं किसी को सुख नहीं है, ना उनको सुख है और ना पीछे जिन्होंने भेजा उनको सुख है। दो तीन मेरे अनुभव जीवन के मैंने देखा, कुछ संगठित परिवार है भाई, चार भाई साथ रहे हैं, धंधा साथ कर रहे हैं, और मैंने अच्छी तरह देखा जो कम पढ़े लिखे हैं वो साथ हैं, जो ज्यादा पढ़े वो कभी साथ नहीं रहे। हाँ आप अच्छी तरह से चकास करके देख लेना, कम पढ़े हैं तो साथ रह रहे हैं, इसका मतलब आधुनिक पढ़ाई ने हमको इतना स्वार्थी और धनार्थी बना रखा है कि हम अपने किसी सगे संबंधी के साथ भी रहने को तैयार नहीं। ये हाँ अनुभव की बात बता रहा हूं मैं, 5 ऐसे परिवारों को देखा और बोला और उन्होंने कहा वाकई हम पढ़े नहीं है, अब हम गलती कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये सब हमारा बना बनाया सारा काम बिगाड़ देंगे। सच कहते हैं ये सत्य, ये आधुनिक शिक्षा की पद्धति ने जो विनाश किया है, एक तो संगठित परिवार समाप्त हो गए, अरे कोई एक परिवार भी सुखी हो वो भी नहीं, तलाक का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये गलती का, ये सब जो ये श्लोक कह रहा है, ये श्लोक किस बात के ऊपर आ रहा है असल में, आधुनिक प्रभुपाद जी कहते हैं आज के इस पढ़ाई की पद्धति जैसे हमारी पद्धति से अलग होती गई वैसे हमारे सारे संस्कार समाप्त हो गए। ये संस्कार थे, गुरु शिष्य को संस्कार देता था। हरे कृष्णा। तो पाश्चात्य संस्कृति में इतनी प्रगति के बाद भी कोई संतुष्ट नहीं है। असली संतोष तो कृष्ण भावना अमृत है। प्रभुपाद जी एक शब्द में कहते हैं, असली संतोष तो कृष्ण भावना अमृत है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक में जहां श्री कृष्ण ये कहते हैं, क्या कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, मैं भोगता हूं। किस चीज को भोगते हो, बोले यज्ञ को भोगता हूं। अब यज्ञ क्या है, बोले संकीर्तन यज्ञ है। चेतना महाप्रभु की पूजा संकीर्तन यज्ञ से होती है, उसी को भोगते, भोग लगाते हैं भगवान को। भोग लगाने का मतलब जिसको भगवान भोगते हैं। तो चेतना महाप्रभु को क्या भोग लगता है, हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान किसको भोगते हैं, संकीर्तन को। और कहते हैं तपस्या, और तपस्या कौन सी है, दूसरा कौन सा यज्ञ है, जप यज्ञ। जो यज्ञ जप करता है, जो संकीर्तन करता है, उसको भगवान भोगते हैं। और भगवान संतुष्ट, तो भक्त संतुष्ट हो गया। और दूसरा किसको भोगते हैं, तपस्या को। कौन सी तपस्या, ये बैठ के एक घंटा कथा सुनना, सर्दी में आके सुबह आके दर्शन भगवान का मंगल करना, ये तपस्या। एकादशी का व्रत रखना, ये तपस्या। इसको भगवान भोगते हैं, और भगवान भोगते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। भगवान संतुष्ट, हम संतुष्ट हो गए। बोले भगवान क्यों भोगते हैं, सर्वलोक महेश्वर, सबका स्वामी वो है। जो जिस चीज का मालिक होता है उसी को वही भोगेगा ना। आपका घर है तो उसमें सुख आप लेते हो ना। तो ऐसे भगवान इस दुनिया पूरी का मालिक है तो उसी को भोगना चाहिए ना। सुहृद सर्वभूतानाम, सबका शुभ चिंतक के, कभी हमको कहीं छोड़ता नहीं। एक जगह कुछ लोग ऐसे नास्तिक कह रहे थे, अरे तुम्हारा भगवान नरक में पड़ा है। तो महाराज ने कहा, महाराज ऐसे कह रहे हैं, बोला सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। ये जीव पाप करके नरक में जाता है, क्या भगवान उनके हृदय में नरक में नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, क्योंकि भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। जैसे माँ किसी का बच्चा बेचारा ऑपरेशन हो तो अस्पताल में जाके बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के बैठती है, बेटा तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। तो ऐसे ये जीव पाप करके नरक में जाता है तो भगवान तो फिर भी परमात्मा के रूप में उसके साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो वहां भी जाते हैं, वहां क्यों नहीं जाते हैं? बोले भक्तों को तो वहां भी, भक्तों के हृदय में तो सो हृदय बैठते हैं कि नहीं बैठते? तो कहने दो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कहने से हमारे भगवान को कोई फर्क पड़ता नहीं। बनाने वाला नरक कौन है, उसी ने बनाया, उसमें जाएगा तो उसको क्या है? जाए तो जाए, घूम के आएगा, उसमें क्या गए है, तो किसी का भलाई करके आएंगे। वो कौन सी बात, हाँ, अब भगवान सबका सुहृद है, लेकिन शांति मृच्छति, इसका अर्थ क्या, फिर ऐसे शांति कैसे मिल जाएगी? इसका अर्थ है आप भगवान से पहले शांति कर लो। सारी दुनिया में शांति की यज्ञ करो, शांति दुनिया में सारी में शांति हो जाएगी। भगवान से पहले शांति करो तब दुनिया में शांति होगी। हमारी भगवान से तो हमारा चल रहा है द्वंद्व। किस बात में, अरे भगवान तुम क्यों भोगता है, हम भोगता है, बस ये ही झगड़ा है। शांति कब होगी, जब भगवान से हमारा एक मत हो जाएगा। हाँ भगवान आप भोगता, हम आपके भोग्य, तो झमेला खत्म। हम कहते नहीं, हम भोगता है, यही तो कॉम्पिटिशन हो गई ना भगवान से। तो इस वक्त प्राय सबका भगवान से, भगवान के प्रतिद्वंदी है। भाई असुर क्या होते हैं, भगवान के प्रतिद्वंदी है। अरे भगवान क्यों भोगता है, हम भोगता है। और भक्त क्या कहते, नहीं भगवान भोगता है, अनन्य भोगतत्व, एक भगवान भोगता हमारा, और कोई हमारा भोगता नहीं, न कोई देवता भोगता है, न कोई संसार का हमारा भोगता, एक भगवान हमारा भोगता है। तो भगवान से शांति कर लो तो विश्व में शांति हो जाएगी। हमारी अशांति का कारण है भगवान के साथ हमारा सामंजस्य नहीं है, एकत्व नहीं है। एकत्व कभी प्रभुपाद जी कहते भगवान से एकत्व है कि भगवान की इच्छा से हमारी इच्छा मिला दे। भाई सुर उसको कहते हैं जो भगवान के सुर में सुर मिलाए, और असुर कहते हैं जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाए, वो असुर। जो भगवान की इच्छा के अनुसार न चले वो असुर, और जो भगवान की इच्छा से चले वो सुर। तो यहां इस श्लोक से साधु जन मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का चरम लक्ष्य समस्त लोकों तथा देवताओं का परम प्रभु एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर भौतिक कष्टों से शांति प्राप्त करते हैं। भगवान से शांति कर लीजिए। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करे और अनुष्ठान पूर्वक कार्य करते हुए कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करे। अनुष्ठापूर्ण कार्य क्या होता है? कृष्ण भावना भावित को स्वीकार करे और अनुष्ठान किसको कहते हैं? अनुष्ठान का मतलब संकल्प करे कि मेरे को रोज इतना ये सेवा करनी है, अनुष्ठान इसको बोलते हैं। अनुष्ठान का मतलब जैसे मैं रोज के 16 माला जपूंगा, ये अनुष्ठान है। ऐसे जीवन में कुछ संकल्प अनुष्ठान करे और अनुष्ठान पूर्वक कार्य करते हुए अनुष्ठान का कार्य सारे ही है। भागवत क्लास सुनने आऊंगा, ये भी अनुष्ठान है। ये अनुष्ठान जो रोज की नित्य क्रिया है, ये अनुष्ठान है पक्का, रोज करने का अनुष्ठान करके इसमें प्रगति करे, तभी मनुष्य को शांति तथा ज्ञानमय नित्य आनंद पूर्ण जीवन प्राप्त हो सकता है। तथा ज्ञानमय नित्य आनंद पूर्ण जीवन प्राप्त हो सकता है। यहां ये श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। तो किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा इस विषय में? हरे कृष्णा बोलिए। हाँ जी, 2-3 हाथ ऊपर है। Oh, then one can attend the eternal. देखो हिंदी में पढ़ा, मेरे संतुष्टि नहीं हुई, हम पर सुनिए। One must therefore take to Krishna consciousness and advance in Krishna consciousness by properly following the regulative principle. जो अनुष्ठान का यह अंत में उधर पढ़ा, मैं संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि लिखने वाला असंतुष्ट था। इस नेम किसको कहते हैं? नेम क्या है कृष्ण भावना के? कृष्ण भावना के नेम ही भक्ति का बीज है। भक्ति का बीज हरे कृष्ण मंत्र नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र तो साक्षात भगवान है, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। भक्ति का बीज है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये चेतन चैतन्य में पढ़ के देख लेना। भक्ति लता बीज क्या है? भक्ति लता का बीज क्या है? भक्ति के नेम जो निर्धारित किए हुए हैं गुरुजनों के द्वारा, तो उसका पालन करे। देन वन कैन अटेन एन एटर्नल। तो उसको कैसी जीवन प्राप्त होगी? शाश्वत, ब्लिसफुल, आनंदमय, पीस, इन पीस, शांति एंड नॉलेज। फिर उसको भगवत संबंधी ज्ञान भी प्राप्त होगा। और शांति जब मिलती है उसके बाद क्या आता है? सुख। अशांतस्य कुतः सुखम्। शांति नहीं है तो सुख कहां से आएगा? तो यहां तात्पर्य पूरा होता है। अब क्या प्रश्न है आपका भैया, बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद कक्षा के लिए। प्रभु जी सब ने बताया कि दक्ष को कि दक्ष जो है ये आर्ग्यूमेंट तर्क दे रहा था कि बगैर भोग करे ऐसे उनको ब्रह्मचारी बना दिया, तो फिर उसका फिर तो नारद मुनि ने काउंटर आर्ग्यूमेंट किया कि भोग करने से कभी शांति नहीं होती, मतलब भोग करने से कभी शांति नहीं मिलती। और भी देखते हैं भागवत में, जैसे कि कैटर धर्म को जैसे कि भगा दिया, कि कैटर धर्म को, ये जो चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन को भगा, ये चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन है कैटर धर्म को, कि भोग करने से शांति मिल जाएगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको बाहर कर दिया। तो मेरा इसी संदर्भ में ये प्रश्न है कि प्रोजी कभी बार हम जैसे देखते हैं आसपास की भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं, तो वे भी बहुत चिंतित हो जाते हैं कि किस ग्रह के कारण ये दुख आ रहा है, और फिर वो एस्ट्रोलॉजी का आश्रय लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी का आश्रय लेंगे, या फिर कभी बार हो सकता है वो तंत्र विद्या इन सब कभी आश्रय लेते हैं। तो अभी क्या ये शुद्ध भक्ति के मार्ग में ये क्या कैटर धन है कि या फिर श्रद्धा की कमी है, या फिर ये ठीक है ले भी सकते हैं? कृपा करके इसमें मार्गदर्शन कीजिएगा।
हरे कृष्णा। आप सबने प्रश्न को सुन लिया कि भक्ति के मार्ग में आने के बाद भी अगर जीवन में कष्ट आता है तो लोग कभी जाते हैं पंडितों के पास ग्रहण को देखने के लिए, अथवा कहीं कोर तांत्रिक से जाके कोई चिकित्सा करते हैं। आपके प्रश्न के ऊपर मैं प्रश्न पूछता हूं, कोई बीमार होता है तो अस्पताल जाते हैं कि नहीं? कोई भक्त बीमार होता है अस्पताल जाते हैं कि नहीं?
हाँ,
क्यों, क्या जरूरत है? भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हाँ, जाते हैं कि नहीं जाते हैं?
जाते
हैं, जाते हैं, दवाई लेते हैं ना?
बिल्कुल।
जैसे हमारे बीमार होने के ऊपर दवाई लेने की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्रों का नियम है कि रोग है तो उसको बढ़ने मत दो, ऐसे भागवत में प्रभुपाद जी ने लिखा है, विवाह से पहले लड़के लड़की का ग्रह नक्षत्र को जो देखना अच्छा है, क्योंकि नहीं तो भविष्य में परेशानी होती है। तो शुद्ध भक्ति में, वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में इसको लिया है कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भगवान से ज्यादा डिपेंडेंट करना शुद्ध भक्ति में बाधा है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है फिर। लेकिन जो आवश्यक, जितना डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर को भगवान मान लेते हैं, बस जाते हैं अपने चिकित्सा करते हैं, उसके बाद आके भगवान की सेवा में बाधा हो रही है इसलिए कर रहे हैं। ऐसे किसी कारण से भगवान की सेवा में बाधा हो रही है और कहीं से हमारे को कोई उसकी सहयोग मिल रहा है, तो उस सहयोग को इतना ही समझना चाहिए जैसे डॉक्टर से इलाज करा के आए। लेकिन उसी वो अगर कल कहे कि भगवान के मंदिर में नहीं जाना, तो ये हो गया अपराध। ऐसा अगर ऐसी स्थिति आए, इसलिए वैष्णव उपचार भी है तांत्र में, वैष्णव तंत्र भी है, ऐसा नहीं कि वैष्णव तंत्र नहीं है। जैसे हमारे पास पूरी पद्धति वैष्णव पद्धति पूजा की आ गई, 16 संस्कार की वैष्णव पद्धति है, ऐसे वैष्णव भी उपचार है। कुछ उपचार कुछ चीजों के वैष्णव हैं, तो उन सदमार्ग के उपचार करने में जिसमें हमारी भक्ति में बाधा नहीं बने तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रायः पूर्ण रूप से जो ये सिद्धांत है किसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं है, ये जैसे जो जो भाई संन्यास लिया है अथवा ब्रह्मचारी मंदिर में रहते हैं, तो वो पूर्ण भगवान के ऊपर आश्रित है। हम जो गृहस्थ में रह रहे हैं, संसार के सारे कार्य बाकी कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं आवश्यकता है तो इसका ये कोई रुकावट नहीं है हमारी भक्ति में, अगर इसको हम भक्ति से ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। भक्ति का सहयोग ही है तो कोई आपत्ति नहीं, अगर हमारी भक्ति में सहयोग देता है तो कोई आपत्ति नहीं, और ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन बिल्कुल ऐसे कट्टरपंथी की तरह हम जाएंगे नहीं कहीं, उस स्तर पे हो तो ठीक है, लेकिन ये सबका स्तर नहीं है। माधवेंद्रपुरी कह सकते हैं कि पूजा तुम्हारे को नमस्कार है, यज्ञ तुम्हारे को नमस्कार है, मैं तुम्हारा किसी का नहीं, भगवान के चरणों में आनंद मिल रहा है। यहां तो भगवान के चरणों में आनंद मिलने का स्तर आए तब ये कर सकते हैं, लेकिन वो स्तर हमारा नहीं है। तो क्या इसमें पात्र के हिसाब से होता है कि कौन पात्र है और उसके लिए क्या जरूरी है, तो इसको इसका इंडिविजुअल है, इसकी ये ब्लैंक रूल नहीं बन सकता। हरे कृष्ण,
धन्यवाद जी।
तो एक और प्रश्न है, चल बोलिए भाई, टाइम हो गया, ये देख रहा है मुझे।
हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे बताया जाता है कि गृहस्थ आश्रम में कुछ रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट की करी जा सकती है, रेगुलेटेड, और अभी हमने लेक्चर में भी ये सुना और भागवतम में भी ये बताया है कि जैसे थोड़ा सा भी अगर हम भोग करेंगे तो वो भोग की वासना बढ़ती जाएगी और दिक्कत, और जैसे खुजली है वो बढ़ती जाएगी, तो ये दो स्टेटमेंट्स वो कैसे बैलेंस हो सकती हैं? एक जगह क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गृहस्थ है, अब वो रेगुलेटेड करेगा तो भी उसकी बढ़ेगी क्योंकि वो भोग है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को कैसे बैलेंस किया?
भोग करने से भोग की वासना बढ़ती है, ये है सिद्धांत, और गृहस्थ आश्रम में हमको भोग का, प्रभुपाद जी मतलब शब्द जो शब्द लिखते हैं भोग का लेसन लेते हैं, तो फिर उसमें वासना कैसे नहीं बढ़ेगी? उसका प्रभुपाद जी का उत्तर ये, देखो तो चार जो हमारे आश्रम है उसमें सिर्फ गृहस्थ आश्रम में 25 साल तक ही भोग की हमारे को, वो भी नियमित भोग की अनुमति है। ब्रह्मचार्य आश्रम में नहीं है, वानप्रस्थ और संन्यास में तो है ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि रेगुलर भोग मतलब आप पहले से निर्धारित करो इतना ही समय हमारे को भोग के लिए मिला है, इसके बाद नहीं है। जैसे जैसे जब मंदिर का नियम है कि भाई 9 से 10 बजे तक प्रसाद है, अब 10 बजे आओगे तो नहीं मिलेगा, टाइम पूरा हो गया। मंदिर के दर्शन में आएंगे तो टाइम ये है मंदिर खुलने का, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ऐसे ग्रस्त को मालूम है कि एक लिमिट है, उसके बाद हमारा ये काम खत्म करना है, तो उसको पहले से दिमाग में ये है कि ये हमारा, इसका उद्देश्य हमारा क्या है कि संतान की उत्पत्ति होगी, हमारी परंपराएं चलेंगी आगे चल के, बस ये हमारा इसमें उद्देश्य, भोग उद्देश्य नहीं है। रात हम कह रहे थे भारतीय विवाह संस्कारों की सुरक्षा के लिए और अपना वंश चले इसके लिए, वंश के चलने के लिए और परंपरा की रक्षा के लिए भारतीय विवाह का विधान है। भोग प्रदान भारतीय विधान विवाह नहीं है, भोग के लिए विवाह नहीं है भारतीय संस्कृति का। जैसे ऋषि विवाह करते थे ताकि उसके पुत्र ही शिष्य की तरह, सुखदेव गोस्वामी विवाह किया व्यासदेव ने तो सुखदेव गोस्वामी मुझे चाहिए भागवत परंपरा चलाने के लिए, तो वो क्या है परंपराएं चलती थी और वंश चलता था। तो भारतीय विवाह का मूल उद्देश्य भी भोग वासना नहीं है, इसलिए इसको रेगुलेटेड कहते हैं। और पाश्चात्य विवाह में भोग वासना ही मुख्य है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो अब क्या है पाश्चात्य प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हमारा विवाह भी भोग प्रदान हो गया है। पहले ऐसा नहीं था कि लड़का लड़की को देखना है कैसा है, ऐसा नहीं। जैसे माता पिता ने किसी के साथ विवाह कर दिया तो कर दिया, हमें क्या करना है, वंश की वृद्धि होगी और हमारा संस्कारों की सुरक्षा होगी, ये खत्म हो गया। अभी तो देख बकरे बकरी को, जैसे बकरा है कितना मोटा है पतला है देखे, ऐसे देखते हैं ना। ऐसा जो ये विधान आ गया है ना, ये बड़ा अपमानजनक भी है और भोग प्रदान भी है, ये अपमानजनक है भोग प्रदान भी है। पहले विवाह की व्यवस्था भगवान ने साक्षात जाके कर्दम को कहा तुम्हारे घर में देवहूति को कल स्वयं मनु लेके आएगा, आप विवाह कर लेना। तो विवाह पहले भगवान व्यवस्था करते थे विवाह की, जब कोई और नहीं था बड़ा माता पिता तो भगवान ने किया। ब्रह्मा जी आए देवहूति को कहा कि ये 9 ऋषियों को तुम्हारी ये कन्याएं देंगे दे दो, ये कन्या इस ऋषि के योग्य है ये कन्या इस योग्य, तो ब्रह्मा जी ने आके उनका विवाह कराया। तो विवाह पहले बूढ़े बुजुर्ग अपने कुल परंपराओं को देख के कराते थे, अब वो सब समाप्त हो गया है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में नियम से चलने वाले बहुत कम रह गए हैं, बहुत मुश्किल है ये, भोग से बचना मुश्किल है। वानप्रस्थ हमारे पास, हमने अभी तक जितने देखे हैं कोई 2-4 देखे हैं, गृहस्थ में तो हलाकों देखे हैं लेकिन ब्रह्म वानप्रस्थ 2-4 देखे हैं हमने जो वृंदावन में आके रहे हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है। ये कहते हैं आसान, कहना आसान है लेकिन इसको अनुभव में लाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए जब तक हम अपने समाज नहीं बनाएंगे, क्या अभी रहते तो हम समाज दूसरे में है ना, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमको अपने समाज बनाने चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी अपनी हो, तो उस वातावरण में सभी एक जैसे है तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब सज्जन के संग रह रहे हैं वो तो सब दूसरे हैं, तो जैसे हमारी स्कूल अलग होनी चाहिए कि हमारे सब बच्चे एक जैसे होंगे तो दूसरे बच्चों को कोई दूसरी चीजों की, अभी तो हमारा बच्चा उसी स्कूल में जा रहा है, दूसरे लड़के के पास जो चीज देखा वो मांगेगा ही ना, उसका संस्कार उसी का आ जाएगा ना। इसलिए हमको कम्युनिटीज अपनी डेवलप करने की आवश्यकता है, तब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है वो अमल कर सकेंगे, प्रैक्टिकली तब कर सकेंगे, नहीं तो इस स्थिति में थ्योरेटिकल पॉसिबल है प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है अपनी कम्युनिटी का, कम्युनिटी अपनी बना के रहने का। इसके लिए अभी तक कोई हमने प्रयास शुरू ही नहीं किया है, कहीं किया है तो किया है लेकिन कर सकते हैं अभी कमिटमेंट इसके लिए। 10 आदमी भी तैयार हो जाएं, जो आपके घर इस वक्त यहाँ है वो करोड़ों से ऊपर का है, फ्लैट है तो भी करोड़ों के ऊपर सा है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर उसके अंदर आपको 1 एकड़ जमीन मिल जाएगी, आपका घर भी बन जाएगा, आप 4 गायें भी बांध सकते हैं, पीछे आपकी सब्जी भी बनेगी और 10 आदमी हो ना तो हर एक अलग अलग वेरायटी तैयार करें तो दसों की जरूरत पूरी हो जाएगी। दस गाड़ियां बीस गाड़ियां रखने की जरूरत नहीं है, एक वहां से गाड़ी सब आपको शहर में लाए, काम पर काम करो और शाम को वापस जाओ और स्वस्थ वाली हवा खाओ, स्वस्थ वाला अपना सब्जियां खाओ, अपने फल फूल खाओ, अपनी गाय का दूध पियो और भगवान का भजन करो, तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन अभी हमारा खान पान सब पर, कौन पकाने वाले हैं, कौन उगाने वाले हैं, कौन लाने वाले हैं, उनका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। जब तक हम कमिट करके अपनी कम्युनिटीज नहीं बनाएंगे, प्रभुपाद जी ने कमिट बना ऐसी हमारी समाज बनाने के लिए प्रेरणा दी थी, बनाया न्यू वृंदावन, बनाया न्यू नैमिषारण्य बनाया, लेकिन अभी तक हम इसमें सफल नहीं हुए। और उसका मुख्य कारण ये है कि हम आधी उम्र के बाद तो आते हैं, 20 साल के बाद भक्त बनते हैं, तो पहले 20 साल जो कचरा हमारे दिमाग में आया उसको निकालने में और 20 लगते हैं उसमें, उससे साफ होने में 20 साल और लग जाते हैं। इसके लिए ये संभव तब होगा जब आपके बच्चे ऐसी शिक्षा के मार्ग में चलेंगे, और वो बच्चे तब चलेंगे जब आपके दो से ज्यादा होंगे। अब आपके पास एक ही नहीं है तो हलाओगे कहां से? एक बच्चा है तो हम काम कहां से शुरू करें? हमारी समस्या ये है कि आपके पास बच्चे नहीं। अगर आपके पास दो दो तीन तीन बच्चे होते तो एक एक हम ले लेते तो काम कहां से शुरू कर देते? हमारी बड़े सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम समाज ऐसा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप भाई आप देखो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दूसरा नंबर बच्चा एक लिया तो पूरा एक समाज पैदा हो गया, आज सिख समाज हो गया। ये तो बच्चे तो हमारे है ना, ये शिष्य तो हम थे ना उनके, ये गुरु थे, वो गुरु थे, हम शिष्य थे, हमने शिष्य दे दिया। शिष्य का अर्थ होता है सिख, सिख और शिष्य संस्कृत में सिख का अर्थ है शिष्य, तो ये शिष्य है गुरु के, तो एक समाज बन गया ना। तो बच्चे दोगे तो किसी मार्ग में चल जाएंगे। तो अभी जो नए नौजवान विवाह करने जा रहे हैं वो एक संकल्प कर रहे हैं कि दूसरा बच्चा हम कृष्ण भावना अमृत संस्था को देंगे, तभी जाके हम कोई समाज पैदा कर सकें जब बच्चों की शिक्षा से ये संभव है, क्योंकि उसी वातावरण में डाल के रखेंगे तो उसको कुछ। अभी हमारा हम जाते उधर रहते हैं तो भी लैपटॉप साथ ले जाते हैं, तो हमारा आदत पड़ी हुई है ना, हम उसको बिगाड़ना डिलीट करने में बहुत टाइम लगता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद।